नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यह 8वीं जापान यात्रा है। श्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ यह पहली शिखर बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
भारत और जापान की दोस्ती का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने पिछले 12 वर्षों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों देशों के बीच 22 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच पुरानी मित्रता को और मजबूत करेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो।
इसके बाद प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट का लोकार्पण किया। यह संयंत्र 7600 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित हुआ है। श्री वैष्णव ने इसे देश की सेमीकंडक्टर यात्रा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
भारत के नौजवानों की बहुत बड़ी ये स्ट्रेंथ बनने वाली है भारत की पूरे टेक्निकल इकोसिस्टम में। आज भारत एक उभरता हुआ सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और इसमें गुजरात का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि गुजरात ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के साथ साथ उसका बहुत रैपिड एग्जीक्यूशन भी किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री ने पिछले एक दशक में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भारत के उपायों के बारे में बताया। कतर के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति में विश्वास व्यक्त किया। भारत और भूटान ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में तकनीक सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत और भूटान के बीच स्थायी साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण समृद्धि के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और बांग्लादेश समन्वित गश्त और सतर्कता बढ़ाने जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 4 दिन के सीमा सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में यह सहमति बनी। दोनों बलों ने तस्करी, मानव तस्करी, अवैध घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर बल दिया। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 3.5% हो गई है। यह जून में 1.5% थी। पिछले साल इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई थी। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी ने पार्टी महासचिव डी राजा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनके सुझाव लिए। यह बैठक आयोग के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ चल रही बातचीत के क्रम में है। महाराष्ट्र में मुंबई के विरार पूर्व में कल रात एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग का बचाव अभियान जारी है और अब तक 24 लोगों को बचाया गया है। मलबे में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और खेलों में गुरप्रीत सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और अमनप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता है। गुरप्रीत, अमनप्रीत और हर्षा गुप्ता ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में भारत अब तक 44 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 82 पदक जीत चुका है। इसके साथ ही